कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के कर्ता कर्म अधिकार के हम 96 नंबर की गाथा को देख रहे हैं। यहाँ तो ये बात हो रही है कि ये जो गेय पदार्थ है उन गेय पदार्थों को जानना छोड़कर मैं उनका कर्ता हूँ, मैं उनका भोगता हूँ, ऐसे इस जीव के परिणाम हो रहे हैं और इसलिए उसमें यानि खास करके अज्ञानी जीवों में सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणामों की विद्यमानता है और उसके कारण उन्हें आत्मानुभव नहीं हो रहा है, इस बात की हम चर्चा कर रहे थे। देखो हम पृष्ठ क्रमांक 56 पर आए हैं। यहाँ तो हमने दो उदाहरण भी देखे थे, किस लिए कि एक तो सविकार चैतन्य परिणाम के कारण कौन है और दूसरा सोपाधिक चैतन्य चैतन्य परिणाम जो है उसके लिए कारण क्या है। इस बात को समझाने के लिए उन्हें भूताविष्ट और ज्ञानाविष्ट ऐसे दो पुरुषों का उदाहरण देते हुए ये बात हमको समझाई थी। अभी आपको याद है ना कि भूताविष्ट जो पुरुष जो है उसके कारण से इस जीव के कैसे परिणाम होते, इसकी तुलना किसके साथ तुलना की थी, जो अभी हमने दो परिणाम बताए ना उनमें से, हाँ, सविकार और ध्यानाविष्ट सोपन। ये बात ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बात और आसान हो जाएगी। देखो ये ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है या पहला, गिनो तो गिनो, सेकंड पैराग्राफ। अज्ञानी ने क्रोधादि भावो पुण्य पापना भावो पोताना भासे छे। अब वास्तव में ऐसा है कि वह उसके स्वभाव में नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, फिर भी वो अपने स्वयं के हैं ऐसा वह मानता है। पन ते भावोति भिन्न हूँ चैतन्य मूर्ति भगवान ज्ञायक छू एम तेने भासतु नथी, वास्तु नथी यानी ज्ञान मा अवतु नथी, ऐसा लेना। ये जैसा हम कहते ना कि मुझे भास हुआ, क्या कि साक्षात यहां से हुकमचंद जी भारिल गए, मुझे ऐसा भास हुआ, वो भास की बात नहीं है यहाँ पर। ये वास्तु नथी यानी ज्ञान मा अवतु नथी, हूँ ज्ञायक छु एम तेने भास्तु नथी। ये खास गुजराती भास्तु का अर्थ कुछ अलग है क्या, क्या है? हाँ वो बात नहीं है, ये भास्तु नथी यानी ज्ञान में आवतु नथी, इतनी बात लेना। हूँ तो मारा निर्मल ज्ञान सुखादि स्वरूप नो अनुभव करनार छू एम अज्ञानी ने पोतानु स्वरूप भास्तु नथी एटले ज्ञान में आवतु नथी, ऐसा लेना। तेथी ते पोता थी एक रूप कहे, ये क्या है, करेला है ना, ये एक रूप करेला यानी किए हुए कहेला, एक रूप तो नहीं कहेंगे, करेला ही चाहिए। वो स्वयं करता है ना, है क्या उसमें, हाँ कोई बात नहीं, हम करेला ही समझते हैं, यानी वो स्वयं करता है ना उसको एक रूप, वो तो है नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, फिर भी वो स्वयं ऐसा मानता है कि वो एक हो गए हैं। तो कहते ते थी ते पोता ने एक रूप करेला, पुण्य पाप आदि विकारी भावो नो सविकार चैतन्य परिणाम नो करता थाय छे, आवो मार्ग लोको ने सांभळवो पण कठन पड़े तो ते पोतामां प्रकट केम करीने करे। ये पहली बात ही समझ में नहीं आती है, क्या बोल रहे हो, कौन भूत आया और क्या क्या हो गया, क्या ध्यान किया, ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। तो आवी बात पहला मां पहला तो सांभळवो पण कठन पड़े, यानी वो एक्सेप्ट होने में सुनने में भी उसकी डिटेल मालूम नहीं होती है। तो कहते हैं कि पोता मां आवो मार्ग केवी रीते प्रकट करे, आहो जेना जन्म मरण नो अंत नजीक आवी गयो छे तेने ज आ वात बेसे एम छे। ये तो निमित्त का कथन है, उसको तो अपने को ही समझना है। आ प्रमाणे 94वीं गाथा मां 16 बोल द्वारा जे कया ते सगळा सविकार चैतन्य परिणाम नो अज्ञानी करता प्रतिभासे छे। केम के तेने शुद्ध चैतन्य स्वरूप भासतु नथी, तेना कर्तापनानु मूल अज्ञान छे एम अहीं सिद्ध कर्युं। हवे छ द्रव्य ने मारा माने छे ए सोपाधिक चैतन्य परिणामनु स्वरूप। अभी पहले तो सविकार की बात की हो, अभी यहां कहते हैं सोपाधिक चैतन्य परिणाम। क्या क्या समझाया, छ द्रव्य ने मारा माने छे ए सोपाधिक चैतन्य परिणामनु स्वरूप समझवा ध्यानाविष्ट पुरुषनु दृष्टांत कहे छे। ये दृष्टांत तो हमें मालूम है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वड़ी जेम अपरीक्षक आचारणा उपदेश थी महिषनु एटले पाड़ानु ध्यान करतो कोई भोळो पुरुष अज्ञान ने लीधे महिष ने आने पोता ने एक करतो थको, या एक करतो आ गया ना सब। हूँ गगन साथे घसाता शिंगड़ा वालो मोटो महिष छू, एवा अध्यास ने लीधे मनुष्य ने योग्य एवं जे ओरडाना बारणामांथी बहार निकळवू तेनाथी च्युत थयो होवाथी ते प्रकारना भावनो करता प्रतिभासे छे। जो कोई अपरीक्षक एटले अनगढ़ गुरुए कोई भोळा पुरुष ने पोताने इष्ट होय तेनु ध्यान करवा कह्यु, क्या ते भोळो पुरुष पोताने इष्ट एवा पाड़ानु ध्यान करवा लाग्यो। पाड़ो आवो पुष्ट शरीर वालो, भारे माथा वालो अने खूब मोटा शिंगड़ा वालो छे, एम ध्यान करता करता आ ज्ञान ने लीधे ते पाड़ाने अने पोताने एक मानवा लाग्यो। पाड़ो आवो पाड़ो तेवो एम विचार करता करता हूँ ज आवो गगनचुंबी शिंगड़ा वालो मोटो महिष छू एम एने थई गयु। अरे आ बारणू नानू अने शिंगड़ा मोटा छे, हवे हूँ बारणामांथी बहार केम करीने निकळूं, पोते मनुष्य छे अने मनुष्य ने योग्य बहार निकली शकाय एवं बारणू छे ए भूली गयो। पोते बारणामां थई ओरडामां पेठो ते मनुष्य ज हतो, पण हूँ मोटा शिंगड़ा वाळो पाड़ो छूं एम अध्यास थई जवाथी मनुष्य ने योग्य एवं जे ओरडाना बारणामांथी बहार निकळवुं तेनाथी ते च्युत थई गयो होवाथी हूँ पाड़ो छू ते प्रकारना भावनो ते करता प्रतिभासे छे। यानी उसका वो करता ऐसा जानने में आ रहा है। एम ये तो हो गया दृष्टांत, अभी इसके दृष्टांत को सिद्धांत पर घटाते। एम अज्ञानी ने, ये किसकी बात चल रही है, अज्ञानी की, हमने सोचा मेरी हाँ परद्रव्य मारा छे आ शरीर मारू छे आ वाल छे ने सफेद वाल मारा छे ऐसा हम बोलते हैं ना, ये मोटू शरीर मारू छे, ये शरीर जो है वो मैं हूँ। यहाँ तो शरीर की बात तो बहुत दूर, यहाँ तो शुभराग के परिणाम है वो मारा छे, ऐसी बात है कि अज्ञानी ने परद्रव्य मारा छे एवी चिरकालनी मान्यता ना करने। ये आजकल के नया रोग नहीं है, ये तो बहुत लंबा पुराना है। परद्रव्य माथी निकलवू मुश्किल थई पड़ियू छे। अभी परद्रव्य में किसको लिया, देखो आ स्त्री पुत्र परिवार मकान धन संपत्ति देवगुरु इत्यादि बधा परद्रव्य मारा छे एवो एने ध्यान कर्यु छे अने जाने के पोते ते रूप थई गयो छे। अभी थई छे गयो ये हो गया, ये थई गयो छे ऐसा चाहिए, आगे पीछे एम मानवा लाग्यो छे। एटले हवे एमाथी छूटवू एने भारे मुश्किल थई गयो छे। ये तो भाई ये तो उन्होंने अज्ञानी की बात बताई है। हमें जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तब तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए, क्या ये मान्यता मेरी भी है कि क्या मैं परद्रव्यों को अपना नहीं मानता। ये घर है ना मेरा, अभी बारिश में तो पानी आने वाला है तो मेरे को उसको बराबर रिपेयर करना चाहिए। तो बार बार अपने को उसी बात का मारू घर से, बोले बाजू में वो आता है बोलते है ये हमारे घर में पानी आ रहा है, तुम सेक्रेटरी हो कुछ तो भी करो। भाई तुम्हारे घर में पानी आ रहा है ना, तुम तुम्हारा देखो। अब मेरे घर में पानी आवे तो मेरे को चिंता, यानी उसके घर में पानी आवे तो चिंता नहीं। तो ये मेरा है ये मान्यता है, ऐसे हर बात में लगा ना। हाँ ये परद्रव्यों में अपनापन है, इसलिए कह रहे हैं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो जब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब क्या ये बात मेरे पे लागू होती है क्या? नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या है? और होती हो तो फिर सोचे हम कि क्या हम इससे दूर हो सकते हैं। हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकेंगे। बस इतना ही हमें समझना है कि इन परद्रव्यों रूप में नहीं हूं मैं, तो ज्ञायक स्वभावी हूं। और ये सारे जो परद्रव्य है या ये जो परिणाम जो आ रहे हैं उनके बारे के चिंतवन के, वो मेरे ज्ञान के गेय है, मैं उनका ज्ञाता हूं, उनका कर्ता नहीं हूं। बस यही इलाज है, अन्य कुछ नहीं है। शू कह रहे जो फिफ्थ लाइन है ना, 1 2 3 4 5 परद्रव्य ना विचार माते एवो एकाकार थई गयो छे के हूँ शुद्ध चैतन्य में आत्मा छू ए भूली गयो छे अने हूँ परद्रव्य छू एम मानवा लाग्यो छे। पोताने भूली ने परद्रव्य ना ध्यान मा मशगूल थयेला तेने हवे परद्रव्य थी खसवू अत्यंत मुश्किल थई पड्युं छे। अहो आचार्य देवे अपार करुणा करीने आवी वात करी छे, कहे छे परद्रव्य ने पोताना माने तेने तेमाती बाहर निकलवू भारे कठन पड़े छे। देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धानो विकल्प ते राग छे, अने ते राग भलो छे एम माने तेने एनाथी भिन्न थवू मुश्किल छे। अभी देखो देखो यहां तो उन्होंने देवगुरु शास्त्र की बात बताई है, अभी ऊपर की मैं बात बता रहा हूं। परद्रव्य ने पोताना माने तेमाती बाहर निकलवू पड़े भारे। अभी क्या है, किसी के पास कम पैसा है, संयोग कम है, और किसी के पास संयोग बहुत है कि अभी ये इतना मेरा सारा कारोबार है, इससे मैं कैसा पार हो जाऊं। क्योंकि वहां मेरी ऐसी मान्यता है कि मेरे कारण ये सारा कुछ, जो फैक्ट्री का कहो या जो कुछ कंपनी चल रही है, जब हमारे रिलायंस वाली की, तो वो मेरे कारण से चल रही है, अभी मैं वहां से निकलूं कैसा, क्या होगा क्या होगा। तो यहां खेमचंद भाई हमको बता देते, तेरे पास कितनी दौलत है, उस जमाने की बात समझ लो कि 30 साल पहले, उस समय लाख भी तो बहुत होते थे। तो मैं कहता हूं, मुझे अभी एक बात याद आ गई, वहां एक ऐसा छोटा सा बंगला था, बंगला यानी क्या, 2 रूम बस, एक किचन और एक बाहर का रूम, और उसके बाहर में WC बाथरूम वगैरह जो कुछ, अंदर रूम में नहीं बाहर। वो 18,000 में बंगला मिलता था, छोटा सा ही था। तो हमारे पिताजी 17,000 में अड़के बैठे और वो 18,000 बोले। हाँ तो मिला नहीं, हम गए भी नहीं, लिया ही नहीं। फिर बाद में उस समय हिम्मत ही नहीं थी अधिक पैसा खर्चा करने की हमारी। तो लोग क्या कहते हैं कि अधिक संयोग होने से, अधिक पैसा होने से उसमें से निकलना मुश्किल है। तो मैं कहता हूं अंबानी जैसा पैसा होगा तो उसको मुश्किल है कि नहीं? अरे यहां तो भीम अपने खेमचंद भाई कहते थे कि चक्रवर्ती के पास जितनी संपदा है क्या तेरी उतनी है? वे भी उन्हें छोड़ के चले गए। बोल, तो ये मूल बात क्या है, पर वस्तु में जो अपनापन हम जो मानते हैं वो छोड़ना अपने हाथ में है, परद्रव्य हमको कोई पकड़ के नहीं रखता है। ये आपको मालूम है, ये तोता होता है ना, तोता वो हमेशा बेल पे बैठता है, बेल यानी समझे आप क्या बोलते हैं, लता, वेल, वेल वेलडी, उसके ऊपर बैठता है। तो वो कैसा रहता है, एकदम नाजुक रहती है ना, ऐसे स्टिफ नहीं रहती, तो उसको पकड़ेगा तो ऐसे झुक जाती है, तो उसको जोर से पकड़ता है ताकि गिरे नहीं। और वह सोचता है मैं क्या करूं, ये वेल मुझको नहीं छोड़ रही है, मैं तो कभी भी उड़ना चाहता हूं। क्या ऐसी बात है, वह तो उड़ सकता है, ऐसा मानता है कि उसने मुझे पकड़ के रखा है। ऐसा हम कहते, मैं तो ये कब का झंझट छोड़ना चाहता हूं, क्या करूं अभी, ये मेरे घर में बाल बच्चे हैं, ये है वो है, ये धंधा पानी है, इसको कैसा छोड़ूं। तो ये तो हम उसमें इतने रचे पचे हुए हैं कि हमको लगता है कि वो मेरे को नहीं छोड़ रहे, ऐसा नहीं है, मैंने उसको पकड़ के रखा है, ऐसी बात। तो कहे थे, बोल रही
है, ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट में क्या अंतर है, अभी हमने पढ़ा था बहुत, कौन कहेगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसमें बेसिक क्या डिफरेंस किया जो हमको दृष्टांत देकर यहाँ समझाया है, एक है भूताविष्ट और एक है ध्यानाविष्ट, तो भूताविष्ट में और ध्यानाविष्ट में ऐसे क्यों, उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं ना हमको,
मम्मी बता रही।
हाँ बोली, हाँ नहीं, पर उसका उसका यानी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, उसके कारण उस जीव में क्या यानी क्या वहां बना, क्या बात बनी वहां पर। देखो देखो, भूताविष्ट में क्या था कि भूत और मैं एक हूं, तो भूत जैसी क्रिया करता है, यानी मनुष्य के लिए जो हो नहीं सकती नॉर्मली क्रिया, उसको अमानुष क्रिया कहा। अमानुष यानी कोई बड़े बड़े पत्थर तोड़ना या जो कुछ बातें बनती है ऐसी, जो भूत कर सकता है मनुष्य नहीं कर सकता। तो जब भूत से आविष्ट होता है तो वैसी क्रियाएं करता है जो मनुष्य में उचित नहीं है ऐसी। और ध्यानाविष्ट में जो मनुष्य कर सकता है, परंतु वो अपने को भैंसा मान लिया और अपने सिंह बहुत बड़े हो गए मान लिया है, वो तो कर सकता था फिर नहीं कर रहा है, नहीं समझे ये। देखो डॉक्टर को समझ में आया, मैं फिर से बताती हूँ। भूताविष्ट हुआ तो क्या, मनुष्य से जो मनुष्य के लिए उचित क्रिया है उसकी बात नहीं, जो भूत कर सकता है वो ये मनुष्य कर रहा है अपनी मानकर, है ना। जो नॉर्मली मनुष्य नहीं कर सकता वो क्रिया वो कर रहा है, वो अपनी मान रहा है। ध्यानाविष्ट में जो नॉर्मल मनुष्य कर सकता है, अभी ये ध्यान में अपने को उसने भैंसा मान लिया, तो जो कर सकता था वो प्रत्यक्ष जा सकता था, उसने मेरे सिंह आए और वो बहुत लंबे हुए हैं, मैं अटक गया हूं ऐसा मान लिया उसने, वस्तु स्थिति वैसे ही नहीं है। फाइनल रिजल्ट यह डिफरेंस है ना। देखो आप इसमें पढ़ेंगे टीका में, ये मूल टीका में देखो, अमानुष क्रिया करता है, और यहाँ जो वो कर सकता है वो भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसने अपने को वैसा मान लिया।
देखो यहाँ ये जो उदाहरण दिए हैं वो वास्तव,
हाँ मगर वहाँ
क्रिया नहीं कर रहे हैं
ना, ये कुछ कर नहीं रहा,
क्रिया नहीं है जो आरंभ से
मान्यता में, वो सारा ध्यान में ही उसने सब अपने को मान लिया, ये गलत धारणा हो गई उसकी, भ्रांति हो गई वो सारी।
देखो ये बताने का मकसद क्या है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और ये जो पुण्य पाप के जो परिणाम है वो भूत है और उसने मेरे को पकड़ के रखा है, और उसके कारण मैं जो कुछ क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, यानी अभी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं परद्रव्य को बचा नहीं सकता, परद्रव्य को मैं संभाल नहीं सकता, परद्रव्य का नाश नहीं कर सकता, ऐसा लेना तो ये जीव दया के परिणाम आते हैं और उन परिणामों से वह अन्य द्रव्य यानी अन्य प्राणियों को बचाने की चेष्टा करता है, तो ये आत्मा के लिए योग्य नहीं है।
यानी क्रोध मान माया लोभ आदि जो पुद्गल के परिणाम पहले क्या है तो वैसे करता है और मानता है मेरी है, वहां भूत की चेष्टा है वो मान रहा था मेरी है। अब ये क्रोध मान माया लोभ के आवेश में जो कुछ क्रियाएं बन रही है वो मेरी है, वो राग भी मेरा है, वो क्रिया मेरी है, ऐसा मानता है। मैं ज्ञाता हूं ये भूल जाता है, वहां मनुष्य हूं ये भूलकर वो भूत की क्रियाएं को अपना मानता है, भूत और मैं एक हूं ऐसा मानता है। वैसे यहाँ राग क्रोध और मैं एक हो गया हूं।
अब यहाँ ध्यानाविष्ट में क्या बात है कि अपने स्वरूप को नहीं जानता है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ये भूल कर मैं पर द्रव्य रूप हूँ ऐसा उसने मान रखा है।
यानी उसका ज्ञान
दोनों जगह मूल तो अज्ञान ही है, पहले हमने देखा था दोनों जगह मूल तो अज्ञान ही है कि इसके कारण ही है, लेकिन वो अज्ञान किस प्रकार का है कि परद्रव्य और मैं एक हूँ और यहाँ भी परद्रव्य और मैं एक हूँ ऐसा ही है, लेकिन दोनों के एंगल्स जुदे जुदे हैं, अपेक्षाएं अलग अलग है। हाँ साहब, नहीं कोई भूताविष्ट होंगे कोई ध्यानविष्ट होंगे दोनों एक साथ नहीं होंगे।
यानी राग को वो अपना स्वरूप मान रहा है एक बात,
इस अपेक्षा से समझ।
हाँ, जब अन्य द्रव्य के चिंतन में वो रुक गया है तो उसके चेतना उसका ज्ञान कहाँ रुक गया है?
पर को जाने
वो उसमें, क्योंकि उसको अभी स्वरूप का भान नहीं है। ज्ञानी जीव भी वो क्षपक श्रेणी वाले भी आज सुबह बात आई थी ना, पूरे लोक उनके अवलंबन है उनके ज्ञान के लिए। क्षपक श्रेणी में जो मुनिराज है तो किसका अवलंबन लेते हैं उनके मन के लिए, ध्यान के लिए अवलंबन किसका है? तो लोक में पूरे जितने पदार्थ है वो उसमें से कुछ भी हो सकता है उनके, ये हम अकेले शुद्धात्मा की बात करते हैं ना, जानने के लिए है। तो यहाँ पर को जानने का निषेध नहीं है, जो अज्ञानी है अज्ञान के कारण जिसको भी जानता है जिसका भी स्वरूप चिंतन करता है, जैसे अभी धर्म द्रव्य है वो क्या कर रहा है तो जीव और पुद्गल को गति में निमित्त है, ऐसा भी यदि अज्ञानी जान रहा है तो उस विचार में इतना वो तद्रूप हो जाता है इतना कि अपना स्वरूप भूल जाता है, इसलिए उसको ध्यानाविष्ट कहा है, है? परंतु जो समय दृष्टि अपना उसको परद्रव्य को जानते हुए भी मेरा ज्ञाता स्वभाव वो भूलता नहीं अपना, उसके लिए वो ध्यानाविष्ट नहीं कहा। ये ध्यान का निषेध नहीं, ये अपध्यान खोटा ध्यान है ना, अपने को उस रूप उसकी तो बात छोड़ो, वो ध्यानाविष्ट की। टीवी सीरियल देखते हैं तो किसी पात्र के साथ हमें
एक में
को जाते हम उस रूप मानते हैं, रोते भी है देखते देखते जैसे अपने पर संकट आ गया
नहीं ऐसा उस वक्त मानते कि मैं उस जगह होता और मेरे पे ऐसा प्रसंग आता तो रोना चालू करता है।
हाँ, वो तो अपने लिए रोते थे मगर हम दूसरे हम अपने को उस भूमिका में ढाल देते, ये तो सहज प्रवृत्ति होती
है। वो चरित्र मोह का दोष है, ये दर्शन मोह का दोष है।
नहीं नहीं, रोने का निषेध नहीं है, ये रोने के भाव को अपना मानने का निषेध है। हम बोले खूब क्रोध करो कोई बात नहीं, अपना मत मानो उसको। करने को छुट्टी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले में पहले लोग उपदेश क्या करते, अरे क्रोध कम करो, ये कम करो, सब
कषाय कम।
हाँ, तो उसके लिए बताते हैं, अरे होने दो, जो होता है उसको अपना मत मानो, बस अपने आप वो कम होने वाला है। हम अपना मानते हैं फिर वो बढ़ता जाता है। आप पढ़ेंगे आगे?
हाँ, देखो ये पेज 57 पे जो बड़ा पैराग्राफ है बीच का, उसके लास्ट 3 लाइन में, परद्रव्य ने पोताना माने तेने तेमाती बाहर निकलवू भारे कठन पड़े छे, देवगुरु शास्त्रनी विश्रद्धानो विकल्प ते राग छे। देखो यहाँ उसको राग में डाल दिया है और हर हमेशा यहाँ एब्सेंट है, क्या क्या कहते हैं, देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धानो विकल्प ते राग छे, अने ते राग भलो छे माने छे તેને એનાથી ભિન્ન થવું મુશ્કેલ છે. હવે કહે કે ધ્યાનાવિષ્ટ પુરુષ જેમ તે પ્રકારના ભાવનો કરતા પ્રતિભાસે છે, તેવી રીતે આ આત્મા પણ અજ્ઞાનને લીધે જ્ઞેય જ્ઞાયકરૂપ પરને અને પોતાને એક કરતો થકો હું પરદ્રવ્ય છું એવા અસા અધ્યાસને લીધે મનના વિષયરૂપ કરવામાં આવેલા ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ પૂતગલ અને અન્ય જીવ વડે પોતાની શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુ રોકાયેલી હોવાથી એક વાત હો ગઈ. હા, તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ કરવામાં આવેલા રૂપી પદાર્થો વડે પોતાનો કેવળ બોધ એટલે કેવળ જ્ઞાન ઢંકાયેલ હોવાથી એ દૂસરી વાત, અને તીસરી અને મૃતક કલેવર શરીર વડે પરમ અમૃતરૂપ વિજ્ઞાન ઘન પોતે મૂર્છિત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો કરતા પ્રતિભાસે છે. એ અન્ય દ્રવ્ય કે કરતા ક્યું પ્રતિભાસિત હોતા હૈ, તો એ તીન પ્રકાર કે વહાં ઉસકી માન્યતાએ હૈ. અભી વો ઉસકો ઓર એક્સપ્લેન કરેંગે. ધર્માસ્તિ કાય અધર્માસ્તિ કાય આકાશ કાળ પૂતગલ અને અન્ય જીવ દેવગુરુ ઇત્યાદિ ખરેખર જ્ઞાનના જ્ઞેય છે, તે પરદ્રવ્ય આત્મામાં નથી, પોતે જ ન્યાયક છે અને તે બધા પરજ્ઞેય છે. અજ્ઞાની જ્ઞાયક અને જ્ઞેયને એક કરે છે, એ અજ્ઞાની કી ખાસિયત હૈ. દેવગુરુ શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ જ્ઞેયનો વિચાર એટલે ધ્યાન કરતા હું જ્ઞેય રૂપ છું એમ તેને ભ્રમ ઉપજે છે. જ્ઞાનમાં દેવગુરુ શાસ્ત્ર આદિ પરદ્રવ્ય જણાયા ત્યાં તે પરદ્રવ્યોથી મારું જ્ઞાન છે, તે પરદ્રવ્ય વિના મારું જ્ઞાન ઉઘડે નહીં એમ તે પરજ્ઞેયને અને પોતાને એક કરે છે. એ ક્યાં હો ગયા? ધ્યાનાવિષ્ટ, ધ્યાનાવિષ્ટ કી વાત ચાલ રહી ને, યાને પર કે કારણ મેરા ઉદ્ધાર હોગા, પર કે કારણ મેરા ભલા હોગા, ગુરુ કે કારણ મુજે જ્ઞાન હોગા, યે જો હૈ વો પર કો યાને પરજ્ઞેય કો ઓર સ્વ કો એક કર દિયા ઉસને. સ્ત્રી કુટુંબ મિત્ર દેવગુરુ શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ હું છું અને એ મારા છે એવી માન્યતા મિથ્યા દર્શન છે, અને એવી માન્યતા વડે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પોતાના અજ્ઞાન ભાવનો કરતા થાય છે. મનના વિષયરૂપ છ દ્રવ્યો છે. દેખો એ મન, મન જો હૈ ને, મન જૈસા હમને દેખા પાંચ ઇન્દ્રિયા હૈ, ઉસકે હરેક કે અપને અપને વિષય અલગ અલગ હૈ, ખ્યાલ મેં ને, યાને સ્પર્શન ઇન્દ્રિય કા વિષય જુદા હૈ, રસન ઇન્દ્રિય કા વિષય જુદા હૈ. વૈસે યહાં કહે રહે હૈ મન જો હૈ, પાંચ ઇન્દ્રિય ઓર મન, તો મન કે વિષય કોણ હો સકતે હૈ? તો વહાં ઉન્હોને અભી બતાયા, આપકો માલુમ હોગા ના? હા, કિસને બતાયા? રૂપિયા રૂપિયા આપને, બહુ બઢિયા. હા, રૂપી પદાર્થો કો ભી મન જાને જાન સકતા હૈ, ઓર અરૂપી પદાર્થો કો ભી જાન સકતા હૈ. અભી અરૂપી પદાર્થો મેં તો યે એક પૂતગલ દ્રવ્ય છોડકર બાકી સારે અરૂપી હૈ. જાનને કે લીએ હો હમ આત્મા કે બારે મેં ભી જાન રહે ના, વો તો બારે મેં જાન રહે. આત્મા કો જાનના હૈ તબ મન કી ભી આવશ્યકતા નહીં હૈ. હમ શાસ્ત્ર કે માધ્યમ સે આત્મા કે બારે મેં જો કુછ જાન રહે વો તો પહેલે તો શબ્દ સે જાનેંગે યા કર્ણ સે જાનેંગે, સમજ લો કિસી કે વક્તા કે પ્રવચન કે માધ્યમ સે, લેકિન બાદ મેં ઉસકે બારે મેં સોચેંગે, વો તો મન કે માધ્યમ સે ચલેગા કામ. તો યહાં યે બતાતે મનના વિષયરૂપ છ દ્રવ્યો છે, તો વહાં રૂપી ભી આયા ઓર અરૂપી ભી આયા. ધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યો મનના વિષય છે. સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર દેવગુરુ શાસ્ત્ર ભગવાન તીર્થંકર શુદ્ધા સગળા પર પદાર્થ મનના વિષય છે. એ વાત સમજમાં આવી? હવે યહાં રૂપી ઓર અરૂપી દોનો કો લિયા ને. સહજ ચૈતન્ય સ્વભાવ જ્ઞાયક ભાવ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે. યે કિસકી વાત ચલ રહી હૈ? યહાં તો કહેતે જો ત્રિકાળી આત્મા કા સ્વભાવ હો વો કૈસા હૈ? સહજ હૈ, યાને ઉસકો બનાને વાલા યા કિસી કારણ સે વો બના હૈ, કિસી નિમિત્ત સે વો બના, એસા નહીં. ચૈતન્ય સ્વભાવ જો હૈ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ જો હૈ, વો સહજ હૈ. વો જ્ઞાન સ્વભાવ કૈસા હૈ? તો યે ચૈતન્ય સ્વભાવ કહો, જ્ઞાન સ્વભાવ કો અર્થ તો એક હી હૈ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે. यानी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है उसका आत्मा विषय नहीं है, मन के माध्यम से भी जो सोच रहा है उसका विषय आत्मा नहीं है, ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान नो विषय छे। आत्माना निर्मल स्वसंवेदना पुरुषार्थ समय मन उपस्थित छे, पण ते मुख्य नथी। यहां मन नहीं है, पहले तो उसके बारे में उसके माध्यम से ही सोचेंगे। आत्मा ज मुख्य छे, आत्मानु भान आत्मा वडे ज थाय छे, त्या मन तो उपस्थित मात्र छे। खरेखर तो मन नो विषय पर वस्तु छे। खलास, इसमें पूरा समा गया। क्या कह रहे, देखो देखो, आत्मानु भान कहो के आत्मानु ज्ञान कहो, एक ही बात छे। आत्मानु ज्ञान आत्मा वडे ज थाय छे, ये आत्मा वडे ने ज्ञान वडे ज थाय छे। त्या मन तो उपस्थित मात्र छे। खरेखर तो मन नो विषय पर वस्तु छे, छ द्रव्य रूप पर नो विचार करता मनना निमित्ते शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न थाय छे। देखो भाई, यहां दो बातें जरा सी बहुत क्लियर कर दी उन्होंने कि छ द्रव्य स्वरूप पर नो विचार करता अभी शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न थाय छे, क्योंकि पर द्रव्य को जान रहे ना, पर उसमें निमित्त कौन छे? मन। और हम ऐसा मानते कि मन के कारण से हम शुभ या अशुभ विकल्प कर सकते हैं। मन तो जानने में निमित्त है भाई। हम सोचते ना, अरे वो एक इंद्रिय वाला जीव, उसके तो मन नहीं होता है, वो कैसा शुभ भाव करता होगा? ऐसा जो मन में हमारे दिमाग में बातें चलती है ना, तो ये हम ऐसा मानते कि मन, हम देखो देखो, हम इतना बारिश है, इतनी ये है प्रतिकूलता है, फिर भी हमने मन में सोचा कि नहीं, अपने को जाना चाहिए, और हम सोच सोच कर यहाँ आए कि भाई अपने को स्वाध्याय में बैठना है, तो मन के कारण से हम आए ना यहाँ, हमने शुभ भाव मन के कारण से किए ना, मन शुभ भाव नहीं करेगा। देखो फिर से देखो क्या कहते हैं, छह द्रव्य रूप परनो विचार करता, ये छह द्रव्य रूप परनो जो विचार करे छे एने मन छे ना बच्चे, तो मनना निमित्ते ऐसा विचार करता मनना निमित्ते शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न थाय छे। ये मन करता होगा तो मन निमित्त नहीं डालते ये शब्द, तो निमित्त तो कार्य में कुछ करता ही नहीं है, तो शुभाशुभ विकल्प ये क्यों विकल्प हो रहे हैं कि परनो पर द्रव्य नो विचार करे छे, अने ए विकल्प मां पोतानी शुद्ध चैतन्य धातु रोकाई जाय छे, यानी वो उसी में अटक जाता है। न्यायक भाव स्वरूप भगवान आत्मा ने छोड़ी परद्रव्यना विकल्प मां रोकाय छे, तेने परवड़े शुद्ध चैतन्य धातु रोकायली छे, एम कहेवामां आवे छे। वो रुकता तो स्वयं, लेकिन वो परद्रव्य पर आरोप आए कि उसके कारण से रोकाई गई छे। परद्रव्यना विचार मां रोकायेलो अज्ञानी जाने हूं पर रूप थई गयो एम भ्रमथी माने छे। ध्यानाविष्ट, पोताना न्यायिक स्वभाव ने ज्ञान वडे धारी राखवो जोईए, तेने बदले अज्ञानी ने मनना विषय मां शुद्ध चैतन्य धातु रोकाई जाय छे। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, आचार्य भगवान आदि पंच परमेष्ठी अरूपी छे, तथा धर्म अधर्म आकाश अने काल पण अरूपी द्रव्यो छे। ये कैसा ऐसा कह रहे हैं, हाँ, कि अनंत भगवान को भी आरूपी कहा, आचार्यों को भी आरूपी कहा, ऐसा क्यों कहा है? ये कहने में गलत तो नहीं है? हाँ सौभाग्यचंद जी, क्या कहना है आपका? गलत नहीं है, बराबर। क्यों गलत नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं कोई? देखो पहले में पहले ये तो सोचे हम, ये जो पर्याय है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय, तो वो किसकी पर्याय है? ये ख्याल में आ गया? वो भाई जीव की पर्याय, तो जीव रूपी है क्या अरूपी है, ऐसा लेना। अरे मूर्ति, अरे भाई ये तो अरूपी कैसा हो कह रहे आप? भगवान के तो हम दर्शन ले रहे, ख्याल में हमारा दिमाग उधर चलता है, पर मूल को हम देखें कि भाई ये क्या है। देखो कभी भी अपने दिमाग में कोई बात ऐसे अटक जाती है ना, तो मैं तो बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। पहले जिसके बारे में हम सोच रहे वो द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, नक्की करो। अब एक बार वो नक्की हो गया तो फिर कौन से द्रव्य के कौन से गुण की कौन सी पर्याय है, ये बात सोचो। अभी यहां तो क्या कह रहे हैं, यहां जो सर्वज्ञता है, वितरागता है, वो जीव द्रव्य के चारित्र गुण की और ज्ञान गुण की पर्याय, अनंत सुखी है तो वो सुख गुण की पर्याय, तो ये पर्याय जो है वो तो जीव की है, जीव अरूपी है। तो ये सारे सिद्ध, देखो देखो ऐसा कोई भी बात आती है ना, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग क्या बोलते घसे हाँ, तो अपने को ख्याल में आता है। ये नहीं तो अभी लिखा है साहब, क्या करें, लिखा है तो पढ़ना ही पड़ता है ना, और क्या स्वामी जी ने बताया तो उनको तो मानना ही पड़ेगा ना अपने को, ऐसा नहीं रखना। हम बराबर तराश की सब बातें समझने की कोशिश करना, सिद्ध भगवान अरहंत ये नक्की करना हो कि यहाँ जो लिखा है क्या मेरी भी ऐसी ही मतलब मैं उसी कंक्लूजन तक आ रहा हूँ, या अभी आपने कहा इसलिए हमने माना, ऐसा टेंडेंसी नहीं रखना। सिद्ध भगवान अरहंत भगवान आचार्य भगवान आदि पंच परमेश्वर आरूपी छे, तथा धर्म अधर्म आकाश ने काल पण आरूपी द्रव्यो छे। अभी द्रव्य पर आए ना भी ते सगड़ा मनना विषय छे, परंतु ए सौथी भिन्न चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ छू, एम अंतर्दृष्टि नहीं थवाती अज्ञानी मनने अने मनना विषय ने एक करतो त्याज रोकायलो होवाथी ज्ञेय ज्ञायक ने एक करे छे। जारे हूँ शुद्ध ज्ञायक मूर्ति भगवान आत्मा छू एम जेने भान थयू छे एवो ज्ञानी धर्मी जीव जीवादि परद्रव्यना विचार समय पण हूँ परद्रव्यथी भिन्न छू एवं भान वर्ततु होवाथी ज्ञेय ज्ञायक ने एक करतो नथी। देखो पहले अज्ञानी की बात कही, वो ज्ञेय ज्ञायक को एक करते हैं, और अब यहाँ ज्ञानी क्या कह रहे हैं, तो ज्ञानी के बारे में कह रहे कि हूँ शुद्ध छू और कैसा हूँ मैं ज्ञायक मूर्ति छू, यानी जान देखन स्वभावी हूँ, और कैसा भगवान आत्मा, ये त्रिकाल मेरा ऐसा ही स्वरूप है भगवान जैसा। एम जेने भान थयू छे एटले जेने ज्ञान थयू छे एवो ज्ञानी अने एटले अधर्मी जीव जीवादि परधर्मना विचार समय पण, वो अभी भले देव गुरु शास्त्र की बात करता हो, देव गुरु की करता हो, फिर भी उस समय के आ परद्रव्य भिन्न छु ये बात उनके ज्ञान में से हटती नहीं है, श्रद्धा में से चुकती नहीं है, हाँ एवं भान वर्तत हुआ थी ज्ञेय न्यायिक ने एक करतो न थी, वो मेरे से भिन्न है ये बात उनके सदोदित ऐसी वर्तती है। जीण
शुभाशुभ विकल्प में कहा, विकल्प में मन निमित्त है, अकेले राग में नहीं, राग और विकल्प में भेद है ना, राग तो चारित्र गुण की पर्याय है और उस संबंधी जो विकल्प चल रहे मन के द्वारा विकल्प उठा रहा है। देखो एक बात इसमें मैं जो कहना चाहती थी, ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग की लाइन, पोताना ज्ञायक स्वभाव ने ज्ञान वड़े धारी राखो जो ये। अभी अज्ञानी क्या कर रहे उसकी बात छोड़ दीजिए, हम कहाँ अटके हैं उसकी बात करेंगे, तो हम क्या कर रहे, मन के द्वारा आत्मा अपने शुद्धात्मा संबंधी विकल्प उठा रहे हैं और चैतन्य धातु उसमें अटक रही है, नहीं समझे। देखो अज्ञानी तो क्या है, अन्य छह द्रव्यों के विकल्प में अटक रहा है, वहां उसका ज्ञान रुक गया है। अब यहां अपने को अनुभवने का रास्ता क्या है कि ज्ञान के द्वारा सीधे आत्मा को पकड़ो, मन की उपस्थिति रहेगी क्योंकि असंगियों को तो आत्मानुभव होने से रहा है ना, उनके तो हो ही नहीं सकता, मन कहाँ तक कार्यकारी था, तो ये असत विकल्पों को छोड़कर आत्मा संबंधी पहले वो निर्णय करने तक तो मन कार्यकारी, अभी मन की उपस्थिति रहेगी वहां, परंतु आत्मा को सीधा ज्ञान के द्वारा पकड़ना है, तो उसके बदले क्या हो रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे विकल्प उठा रहे। तो विकल्प उठा तो हम मन के द्वारा जो विकल्प उठ रहे हैं उसको जानने में अपना ज्ञान रुक गया है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए सीधे आत्मा को ज्ञान के द्वारा पकड़ना, ये लिखा है ना, पोताना ज्ञायक स्वभाव ने ज्ञान वड़े धारी राखो जोइए। ये अज्ञानी की बात, आगे जो अन्य द्रव्यों संबंधी है वो उसकी बात नहीं, जो अभी शास्त्र से निर्णय तक पहुंच रहा है वो अभी कहां अटक रहा है उसकी बात थोड़ी मैं उठाना चाहती थी। पढ़ेंगे आप?
हाँ, आपका क्या प्रश्न था डॉक्टर?
हाँ, असत कल्पना थी, अभी सत कल्पना है, सत कल्पना है, मगर वो कल्पना है, अभी उससे तो निर्णय तक आ रहा है, अभी निर्णय तक पहुंचता है, अभी उसके विकल्प की उठाने की कोई जरूरत नहीं, अभी वो विकल्प में रुक गया है। अब बस
144 गाथा है ना समय सर भाई के आगे, शुद्ध ज्ञान और नए के विकल्पों से हटकर वो पक्षातिक्रांत होने,
यानी कहीं अभिप्राय में ऐसा उसको लगता है कि मैं कौन सा विकल्प उठाऊं तो अभी मुझे आत्मानुभव होगा, तो पहले अभिप्राय में भले विकल्प उठे उसकी ना नहीं है, परंतु अभिप्राय में ये निश्चित करना है, वो ये तो विकल्प है, ये ध्यान नहीं है, ये आत्मा का अनुभव नहीं है। जब तक विकल्प में रुके रहेंगे तब तक अनुभव नहीं है
ये मन, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ये भी विकल्प ही रहे।
ये सविकल्प ध्यान कहेंगे उसको? नहीं, ये बात नहीं है, होता है, उसकी निषेध नहीं। अभिप्राय में यदि हम उतने करने से ही अपना आत्मानुभव हो जाएगा इसे मानते तो हम अभी विकल्प में रुके हुए है, ये निश्चित करना है अपने कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ अटके हैं, और उससे अभी विकल्प करते करते निर्विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प उठाने की बुद्धि उसके पीछे पड़ी है, मान्यता में उसको सीधे करना है बस, और कुछ नहीं। आगे पढ़ेंगे अभी हम।
आपका प्रश्न क्या था, मैं समझ में नहीं आया।
नहीं नहीं, डॉक्टर ने ऐसा हाँ।
नहीं, यहाँ तो संगी पंचेंद्रिय की बात चल रही है ना, यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय के, तो वो जो शुभाशुभ भाव उठ रहे हैं उसमें निमित्त तो मन है, और अन्य जो जीव हैं उनके शुभाशुभ विकल्प उठेंगे उसमें मन निमित्त नहीं है, इंद्रिय होंगे। अभी आखिरी देखो, अभी एक बात तो हो गई ना, अब हाँ, एक इंद्रिय को केवल स्पर्श इंद्रिय ही निमित्त है। अभी मान लीजिए झाड़ है, गर्मी के दिन है और उसको एक दो दिन पानी नहीं मिले, और कोई पानी डाल देवे तो उसको अच्छा है, ऐसा भाव होवे ना, तो स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से वो जो कुछ होगा ये क्या है, हम पंचेंद्रिय जीवों को एकेंद्रिय परिणाम कैसे हो सकते हैं, इसकी बहुत मतलब उत्सुकता है। मैं तो इससे आगे कुछ बताने के लायक नहीं हूँ, ये तो भाई आपको केवल ज्ञान हो जाए तो समझ जाना, और हम रहेंगे जब अडानी तो हमको बता देना उसमें क्या, ऐसा ही है। अभी उनको तो उसी के माध्यम से ही जो कुछ ज्ञान में जानने में आने वाला है, वहाँ विकल्प तो देखो भाई, वहाँ ज्ञान तो है ना, ज्ञान से वो ठंडा है या गर्म है ये तो जानेंगे, लेकिन वहाँ आपने छाछ डाला तो ठंडा छाछ है फ्रिज का तो वो अच्छा लगे, तो उसकी खट्टा है मीठा वो नहीं समझेंगे, वो ज्ञान का उगाड़ नहीं है। पर अब ये ज्ञान की परिणति ठंडा या गर्म ये जानेंगे लेकिन वहां चारित्र गुण है ना उन्हें, या ये सारू छे जो भाव होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे जो हमको पानी डाल रहा है उसका भला होवे, ऐसा कुछ जो कुछ होता होगा, क्योंकि हर गुण है ना मौजूद वहां, उसका कुछ ना कुछ तो परिणमन होगा ही होगा। हम स्थूल रूप से कह सकते हैं वहां उसको शुभ राग होगा या अशुभ राग होगा, बस अभी कौन सा होगा क्या बता पाएंगे, क्योंकि ये अभी राग के परिणाम जो है, क्रोध के है, जो भी है, खोटे परिणाम अच्छे परिणाम, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है, अभी किसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। आवा विकल्प में रोकाई जवान ये नहीं करता, धारी रखवा शू पोताना न्यायिक स्वभाव ने ज्ञान वड़े धारी रखवा विकल्प में रोकाऊ नहीं, ऐसा अभी बता रहे यहां पर। अच्छा है, पूछना चाहिए। मनना विषय की बात करी, ये पहले मन के विषय की बात, अभी हवे कहे छे इंद्रियों ना विषय की बात करे छे। अभी आपका शायद इसमें उत्तर आवे हो कि इंद्रिय ना विषय रू स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध रूप अने शब्द वड़े केवल बोध स्वरूप निज आत्मा ढंकाई गयो छे। ये आत्मा कैसा है? केवल बोध यानी केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन वो क्यों आवृत हो गया है? तो कहते कि ये जो इंद्रिय के जो विषय है उनको जानने में ये जीव अटका है, तो वो पर को जान रहा है तो अपने को जानने में असमर्थ है, जान नहीं रहे, इसलिए बोध स्वरूप आत्मा ढंकाई गयो छे। इंद्रिय विषय ना लक्ष्य भगवान आत्मा ढंकाई गयो छे। अरविंद भाई आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ वो तो है ना, इसीलिए तो वो अटका हुआ है ना उधर, उसी में उसके सारे विकल्प चल रहे हैं अभी। देखो क्या कहते हैं थर्ड लाइन, इंद्रिय ना विषय ना लक्ष्य भगवान आत्मा ढंकाई गयो छे, रूपी पदार्थ ना लक्ष्य राग थाय छे, अने ते राग ने अने विषय ने पोताना मानवा थी केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ढंकाई जाय छे। ढंकाई जाय छे एटले अनुभव मां आवतो नथी। जुओ आई केवल ज्ञान पर्याय नी वात नथी, इंद्रियना विषयो मारा छे एवा विकल्पो वडे शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा पोते छे ते अनुभव मां आवतो नथी एटले ढंकाई जाय छे, एम आई वात छे। तो पहले तो मन की बात ली, अभी इंद्रिय के विषयों की बात ली, हवे त्रीजी बात कहे छे के मृतक कलेवर वडे परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन पोते मूर्छित थई गयो छे। जुओ आ शरीर मृतक कलेवर छे एटले मर्दू छे एम आई कह्युं छे, पण क्यारे? अत्यारे हमणा ज। શરીર તો સ્વરૂપથી અચેતન મળદું જ છે, પણ જીવના સંયોગની અપેક્ષાએ તેને ઉપચારથી સચેત જીવિત કહેવામાં આવે છે। વાસ્તવમાં તો જીવ હોવા છતાં પણ શરીર તો મૃતક કલેવર જ છે, કેમ કે શરીર કદી જીવરૂપ એટલે ચૈતન્યરૂપ થતું નથી અને જીવ કદી શરીરરૂપ થતો નથી। જીવ સદા જીવ જ છે અને શરીર સદા શરીર જ છે, તેથી તેને મૃતક કલેવર અર્થાત મળદું આઈ કહ્યું છે। આઈ કહ્યું છે ને એ છે જ, એમાં કઈ વાદ નથી, કેમકે વો તો અચેતન હે ને। આઈ કહે છે કે પરમ અમૃતરૂપ વિજ્ઞાન ઘન પ્રભુ આત્મા અજ્ઞાનને લઈને શરીરરૂપ મૃતક કલેવરમાં મળદામાં મૂર્છાયો છે। ये किसको परवड़ेगा, ये बात किसको पचेगी, ऐसा मैं कहूंगा। और ये हम रोजाना कर रहे हैं, कब से? अनादि से, इसलिए अभी हमको उसमें कोई नवाई नहीं लगती, ये तो मेरा ही है भाई। अरे रात दिवस एने ए मर्दानी केटली चिंता, खवड़ावू पीवड़ावू आ शू छे उघाड़वू, यानी क्या ઊંઘાડવું, ઊંઘાડવું ઓ હો સુલાના, ખવડાવવું પીવડાવવું ઊંઘાડવું અને એને પુષ્ટ રાખવું, એમ એની જ સંભાળ કર્યા કરે છે। એ શરીરના લક્ષ્યે મૂર્છાઈ ગયો છે, બેહોશ થઈ ગયો છે। આચાર્ય કહે છે ભાઈ તું આ મળદે કેમ મૂર્છાયો છે? तू तो अमृत स्वरूप आनंद नो नाथ विज्ञान घन प्रभु छो ने जागृत था अने स्वरूप नु भान करी एमा ठरी जा। मुझे सच ऐसा लगता है कि हमने तो दोनों ने इसको एक दो बार तो पढ़ लिया था, लेकिन कुछ साल पहले हमने इसका आद्योपंत स्वाध्याय किया था, और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ करने लायक है तो ये समय सार को स्वामी जी के प्रवचनों के माध्यम से समझना बहुत आवश्यक है। अब ये दोबारा जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को और भी उसमें और क्या जिसमें कहते ना और उंडान थी यानी अंदर मगज में तो ऐसी बात घुस रही है। जब मैंने ये घर लिया था तब मुझे मेरी इच्छा थी कि जिंदगी में यानी अभी जो कुछ मेरा उर्वरित आयुष्य एक बार तो कम से कम आद्योपान समयसार पढ़ना ही चाहिए, इसी इच्छा थी जब से मैं इस क्षेत्र में एंटर हुआ। और जब मैंने ये घर लिया तो मैंने यहाँ पर समयसार को विराजित किया था। लोग बोलते थे और लोटा लाओ उसके ऊपर नारियल रखो ये करो क्या वो शुभ बोलता है, मतलब रहने दे हमारा जो कुछ अशुभ होना है वो होने दो। यानी ये जब ऐसा स्वामी जी बोलते ना अरे आ मृतक कलेवर छे मड़दू छे अने रात दिवस एनी तू पंपाड़े छे एने पंपाड़े उन्होंने नहीं डाले मेरा शब्द है खवड़ावे छे पीवड़ावे छे ऊंघावे छे ऊंघाड़वू अने पुष्ट राखवू एनी ज संभाळ कर्या करे छे। तो ये तो चूपता है जब हम पढ़ते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम कहां देखो देखो आत्मा अगला पैराग्राफ हो यहां कितनी अच्छी बात बताए तू तो अमृत स्वरूप आनंद नो नाथ विज्ञान घन प्रभु छो ने तूने तेरे को अभी तक नहीं पहचाना है। तू तो मैं परका करता हूं मैं अपने कर्तृत्व भाव से इतना अहंकार चढ़ा हुआ है तुझे कि तू ज्ञान स्वरूप ही ये भूल जाता है ऐसा कह रहे जागृत था यानी तू अभी मूर्छाई गये छे ने अभी जैसा तेरे को बेहोश हो गया है तू होश में तो आ जा अने स्वरूप नु भान कर एमा ठरी जा। आत्मा एकलो ज्ञान स्वरूप अमृत रस नु सागर छे प्रभु एनी दृष्टि छोड़ी आ देहना मर्दाना रखोपा मा क्या रोकायो रखोपा मैंने उसको ठीक तरह से रखना। हाँ जी हाँ 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 देखभाल बहुत अच्छा आ दूध उकाड़ा रोटली दाल भात लाडू वगैरह न खान पान मा तू एकाकार थई गयो छे ते तारू अज्ञान छे। आ चा पीधी होय तो मगज तर रहे अने बीड़ी पीधी होय तो बराबर केफ रहे। अरे भाई तू आ शू माने छे वो तो और भी बताती थी जहां सुधी सरखी बीड़ी न पिए त्या झाजरू न थे ऐसा बोलती थी। तो आ क्या तू तो चैतन्य महाराज छो तू क्या भिखारी बनी गयो एम के लत न सिवाय तारू काम नहीं चले। आ तो मूढ़पणू छे भगवान तू तो सच्चिदानंद प्रभु अमृत नो सागर छू तने आ शू थयू शरीर नी सर्व चिंता छोड़ी ने अमृत स्वरूप आत्मा नु भान कर। जो प्रण वात करी मन ना विषय मा छ पदार्थ ना विचार मा चैतन्य धातु रोकाई गयो एक वात। अभी ये जो अपना जीव है ये स्वयं जो जीव है ना तो उसके परिणाम कहाँ कहाँ किस किस बारे में अटक कर अपने स्वरूप का अनुभव करना छोड़ देता है ये तीन पॉइंट बताया। क्या कहा मनना विषय मां तो वो उनके विषय क्या है छह पदार्थ ना विचार मां चैतन्य धातु रुकाएगी एक बात। पांच इंद्रिय ना विषय मां केवल बोध ढंकाई गयो छे ये बीजी बात यानी केवल बोध यानी केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा जो आत्मा है वो अटका हुआ है और तीसरी बात अने परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन स्वभाव ये अपनी अपना वर्णन कर रहे हैं कैसा है परम अमृत स्वरूप ऐसा जो ज्ञान विज्ञान घन यानी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण पिंड स्वरूप ऐसा जो विज्ञान घन स्वभाव है ऐसा यानी कोई ढाया होगा और फेल होगा तो कैसा अपने को खराब लगता है, अपना बच्चा बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता होगा और परीक्षा में फेल हो गया तो हम तो उधर जाके फिर री एग्जामिनेशन ये वो क्या क्या री बराबर कर दे ना वो फिर से तपासने का वगैरह। हाँ जो भी हो वैसे यहाँ कहते कि तू तो विज्ञानगण स्वभाव है और तू मृतक कलेवरमा मूर्छाई गयो छे। ए त्रीजी बात, आ प्रमाणे अज्ञान ने लीधे जीव इंद्रियना विषयमा, एक पॉइंट मनना, ये उल्टा दिया है, मनना विषयमा इंद्रियना विषयमा अने शरीरमा मूर्छा भावने पामेलो होवाथी ते प्रकारना भावोनो भावनो ते करता प्रतिभासे छे। एटले जे जे प्रकारनो शुभाशुभ राग आवे छे तेनो ते करता थाय छे। आ आत्मा, अभी भावार्थ को पढ़ते हैं, अज्ञान ने लीधे अचेतन कर्मरूप भावकनु जे क्रोधादि भाव्य तेने चेतन भावक साथे एक रूप माने छे। देखो ये बताएंगे अभी हम, क्योंकि उसको दोबारा पढ़ेंगे ना। वड़ी ते परज्ञेय रूप धर्मादि द्रव्यों ने पण न्यायक साथे एक रूप माने छे, तेथी तेने सविकार अने सोपाधिक चैतन्य परिणाम नो करता थाय छे। क्या कह रहे हैं? ये कर्मरूप जो है वह भावक है और क्रोधादि भाव है वह भाव्य है, उनको क्या कह रहे हैं? चेतन जो है वह भावक और वो जो राग परिणाम है उसको भाव्य, ऐसा वो उल्टा मान रहा है। क्यों? कि यहाँ जो राग द्वेष के जो परिणाम है, पुण्य पाप के परिणाम है, उनको पुद्गल के कह दिया ना, इसलिए। आ आत्मा पोताना स्वरूपना भान विना अचेतन कर्मरूप भावकनु जे क्रोधादि भाव्य तेने चेतक भावक साथे एक रूप माने छे। शू कहे छे? अचेतन कर्म छे ते भावक छे अने पुण्यपापना भाव ते तेनु भाव्य छे। स्वभावनी रुचि विना जे शुभाशुभ भाव थाय ते अचेतन मोह कर्मनु भाव्य छे, परंतु एम न मानता ते विकारी भाव्य ने चेतन भावक नु भाव्य माने छे। यानी ये राग द्वेष का मैं ही करता हूं ना, क्या ये दूसरे किसी को थोड़ी होता है, ये तो मुझे ही होते हैं और मैं ही उसका करता हूं, ऐसा वह मानता है। शुभाशुभ भावनो करनार खरे करते हो जड़ कर्म छे। आ द्रव्य दृष्टि करावानी वात छे। पुण्य पापनी परिणति उत्पन्न तो जीवनी पर्याय मां थाय छे अने ते पोताना षटकारकनी परिणति थी पोतामां स्वतंत्रपणे थाय छे। ते पर्याय कहीं परती थाय छे एम नथी, पण अहीं द्रव्य दृष्टि करावी छे एटले एम कहे छे के पर्याय मां जे विकार थाय छे निमित्तने वश थता थाय छे, माटे विकारी भाव ते भावक अचेतन कर्मनु भाव्य छे। यानी ये अचेतन कर्म जो है वह है भावक और विकारी भाव जो है वह है भाव्य। ते चेतन भावकनु भाव्य नथी। ये समझ में आ रहे हैं कि बहुत हेवी हो रहे हैं? यहाँ जो जीव की जो खोटी मान्यता हो रही है उस बात उसके लिए वो कह रहे हैं। अभी इतना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। क्रोध मान माया लोभ पुण्य पाप इत्यादि राग परिणाम बदा अचेतन भावकनु जड़ कर्मनु भाव्य छे। यानी ये सारे भाव्य हैं और अचेतन कर्म जो है वह भावक है। चेतन भावक भगवान आत्मा तो चैतन्य नी अतीन्द्रिय आनंद नी दशानो करनार छे। यानी यहाँ जो चेतन को भावक जो कहने में आ रहा है तो उसका भाव्य क्या है? अपनी भाषा में कहो तो स्वरूप परिणमन करना, वो उसका भाव्य है। लेकिन यहाँ वो ये अज्ञानी जीव जो राग द्वेष के जो स्वभाव से विरुद्ध ऐसे जो परिणाम है वो मेरे हैं, मैं उनका भावक हूँ, मैं उनका करता हूँ, ऐसा मानता है। तो क्या कहा? देखो सेकंड लाइन, चेतन ज्ञायक भगवान आत्मा तो चैतन्यनी अतीन्द्रिय आनंदनी दशानो करनार छे। भगवान आत्मा भावक अने अतीन्द्रिय आनंदनी दशा ए एनु भाव्य छे। समकित थता भगवान आत्मा भावक थईने जे निर्मल वितरागी आनंदनी दशा प्रकट करे ते चेतननु भाव्य छे, परंतु अज्ञानी जीव चेतन भावक साथे विकारी भावने एक रूप माने छे। राग मारी चीज छे, मारू भाव्य छे, मारू कर्तव्य छे, एम ते माने छे। भगवान आत्मा भावक थईने निर्मल पर्यायने शुद्ध रत्नत्रयने पोतानु भाव्य करे एवो तेनो स्वभाव छे, परंतु स्वभावने छोड़ीने जाने चेतन भावकनु विकार भाव्य छे एम अज्ञान एम मानी अज्ञानी जीव विकारनो करता थाय छे। ये कल अगर चाहो तो फिर दोबारा लेंगे, ये बात तो समझ में आएगी। ये तो जैसा स्वभाव है वह उसका भाव्य है, वह न मानते हुए जो विभाव है वह अपना भाव्य मानता है, कौन? अज्ञानी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत हो। बोलो।